रहा नहीं जाएगा, मैं उत्पात कर दूंगा, इसलिए मैं ब्रज में नहीं जाता, इस ब्रज से दूर रहते हैं। लक्ष्मी जी यहाँ पर नहीं आ सकी, जो नारायण की अंक साइनी है सेवा करने वाली, तो इन देवताओं की बात क्या है, इस चीज को समझिए। शंकर को भी वहां जाना हुआ तो कैसे आए, बहुत दिनों तक जोग माया की उपासना की पूर्णिमा जी की, और उन्होंने उनको लेकर के एक तालाब में डुबा दिया, उसका नाम है ब्रह्मकुंड। तब वो स्त्री गोपी बन गए, तब कहा जाओ दूर से ये रास हो रहा है उसको देखो, तभी गोपियों ने उनको गुल के मार करके उनके होश उड़ा दिए, फिर प्रार्थना करने लगे तो गोपियों ने उनको, ब्रह्मा जी को था नहीं मिला कृष्ण का, वो गए कुछ भगवान की लीला देखने के लिए और उनके बछड़ों गऊओं को चुरा दिया, तो हुआ क्या, कृष्ण उतने बछड़े लठिया कंबलिया सब जो कुछ वो खुद बन गए और एक बरस तक लीला करते रहे, ब्रह्मा जी को मालूम नहीं हुआ। अंत में वो भी उनके चरणों में गिर करके बार बार क्षमा मांगने लगे। जब इन फिर देवताओं की ऐसी बात है तो साधारण देवताओं की बात है। इसलिए यदि कृष्ण का भजन करना है, उनका भजन करना है, उनकी भक्ति करना है, उनका प्रेम लाभ करना है, तो समुचित रूप में एकांतिक रूप में कृष्ण का भजन। कृष्ण ऐसा देख नहीं सकते, वो कोई चीज आधी खंड परसेंट नहीं लेते, वो एक मन लेते हैं, वो आधी से संतुष्ट नहीं होंगे, इसलिए आधा मन उनको दिया, आधा मन देवता को दिया। ये देवता लोग देते हैं कहां से, कृष्ण की कृपा से ही कुछ देते हैं, इसलिए डायरेक्ट उनका भजन क्यों न किया जाए। इसलिए कहते हैं जथा तरो मूल मिशी शनिन कृपयंती तत्स्कंद भूजो प्रसाद प्राणोपहार जथेन्द्रियाणम तथा सर्वाहरणम अच्युत। परीक्षित महाराज जी को सुखदेव गोस्वामी श्रीमद भागवत ने एक सुंदर शिक्षा दी, यदि कृष्ण का भजन करना है तो ये समझो ये कृष्ण ही ईश्वरों के में भी समस्त ईश्वरों के ईश्वर हैं, वही जगत के आदि कारण भगवानों के भी कारण है, इन्हीं से ही जितने भी भगवान के अंश अवतार निकलते हैं इस कृष्ण से ही ये छोटे से बांसुरी बजाने वाले। इस चीज को समझे, अर्जुन को कृष्ण ने वो विश्व रूप दिखलाया और फिर अपने बाद में उसके बाद में अपना रूप दिखला करके कहा यह रूप बहुत ही दुर्लभ है हमारा, सारा विश्व रूप उसी में अंदर में है, सारे देवता लोगों के दांतों में है, इसलिए कृष्ण की पूजा होने से सबकी पूजा हो जाती है। इसलिए परीक्षित महाराज जी को सुखदेव गोस्वामी का है जथा तरोर मूल निशीचन कृपयंति तत्स्कंद भूजो पशाखा। जिस प्रकार से पेड़ की जड़ में पानी दिया जाए सींचा जाए तो उसकी शाखाएं उसकी जड़ उसके पत्ते टहनियां सभी कुछ पुष्ट हो जाता है, सुंदर उसमें फूल और फल लगते हैं। यदि उसकी जड़ में पानी न दी जाए और पत्तों में पानी दी जाए उसके टहनियों में पानी दिया जाए तो क्या होगा, यदि छोटा सा पौधा है फूल का चारा गुलाब का फूल उसके जड़ में पानी मत दो, एक हमारे जैसे ही बहुत बुद्धिमान कोई बगीचे का मालिक था, मालिक ने कहा कि ये गुलाब के पौधे हमने लगाए हैं इसकी रक्षा करना, मैं 5-6 दिन के लिए बाहर जा रहा। मालिक ने कहा करके वो तो चला गया और इधर में वो जो व्यक्ति थे उन्होंने देखा कि फूलों में पानी दे फलों में पानी दे इसको सर्वत्र पानी देना चाहिए, जड़ में पानी नहीं दिया और सब जगह दिया, कुछ दिनों के बाद में वो फूल का पौधा सड़ गया। जब मालिक आया पूछा कि तुमने क्या किया, तो मैंने तो पानी दिया सब समय पानी से तर रखता था तो ये सड़ कैसे गया, मूल में नहीं दिया सब जगह पानी दिया। वैसे भगवान की यदि भजन न की जाए भगवत आराधना न हो उनके अंग प्रत्यंग ये देवता देवियों की लाख उपासना कोई करे भाई भक्ति रूपी पेड़ नहीं रहेगा। इसको और दूसरे रूप में समझो, प्राणोपहारच जठेन्द्रियाणम। कोई यदि कहे ये पेड़ के हम जड़ में पानी देंगे और पौधों में, फूल में, पत्तों में, डालियों में भी देंगे, तो हर क्या आम की जड़ में दिया और आम के पेड़ में जड़ में भी दिया, उसकी टहनियों में दिया, उसके पत्तों में दिया, उसके फूलों में दिया, तो क्या होगा? एक आम का पेड़ मंजरियों से भर रहा, और उसमें छोटे 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 हरे हरे दाने गोल गोल लग गए, और उसी समय में पानी यदि खूब बरसे तो क्या होगा? इसलिए ये ठीक नहीं, एक आदमी को ये मुख, मुख में आहार देने से समस्त इंद्रियां सतेज हो सकती हैं, किंतु मुख में आहार ना दो, आंख में दूध ढालो, ग्लूकोज का बोतल चढ़ा दो, पेट में भूख लगी है मुख में ना देकर के पीठ को चीर करके इसमें चावल डाल, परमान्य खिचड़ी पूरी पकौड़ी सभी कुछ इसके अंदर में डाल दो, क्या होगा? मर जाएंगे। इसी तरह से कृष्ण की जहां सेवा हो रही है, जड़ में ही तो पानी कृष्ण का ही भजन करो, और उपांग इत्यादि सब जो है पेड़ पौधे के जैसे हैं, ऐसे नाना प्रकार के देवता देवियों को भजन करने से तुमको क्षणिक कुछ मिल जाएगा। कैसे मिल जाएगा? जैसे भस्मासुर को मिल गया, क्या मिल गया? शंकर जी की आराधना करके जिसके ऊपर में हाथ दें वो जल जाए, और वो शंकर जी को जलाना चाह किस लिए? स्वार्थ के लिए, पार्वती जी को जबरदस्ती अपने पास में अपनी स्त्री बनाने के। शंकर जी भी वहां से भागे और ये पीछा किया, शंकर जी की लंगोटी भी खुल गई और उनके दमरू भी हाथ से गिर गए, और त्रिशूल किधर गिर गया उनको पता नहीं। हाँपते 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 एक जगह पहुंचे तो मोड़ पर एक लड़का सा मिला। वो लड़का कौन? कृष्ण ही विष्णु के रूप में बैठे। अरे भोले बाबा, आप सचमुच में भोले हैं, यहां पर आप बैठे हैं किस लिए? आप किस लिए भगे जा रहे हैं? भाई क्या कहें, भस्मा चू जा रहा है, हमें जलाएगा, बात क्या? तो हमने उसको बर दे दिया, जिस पर हाथ रखेगा वो जल जाएगा। अब वो हमारी पत्नी बड़ी सुंदरी है, गुणवती रूपवती है, इसलिए उनको लेने के लिए जब रहूंगा तो उसे मार डालूंगा, इसलिए पहले शंकर जी को भस्म कर देते, उसको ले लेंगे। इसलिए हमारे पीछे पीछे दौड़ता रहा है, अब मुझे दौड़ने की भी शक्ति नहीं रह गई है, आप जल्दी से कोई उपाय कीजिए। उन्होंने कहा ठीक है, आप आगे बढ़िए। वो आया, अरे भोले भाले व्यक्ति कहां दौड़ करके जा रहे? आप इधर शंकर को देखा? हाँ देखा तो है, तो बतलाओ ना बात क्या? तो उसने मुझे बर दिया और बर की परीक्षा करनी है। अरे बेवकूफ, शंकर जानता है पागल आदमी, उसके बात का कोई ठीक नहीं, मस्तिष्क भी गड़बड़ है, उसकी कोई बात ठीक नहीं। अरे तुम खुद ही परीक्षा करके देखो इसमें बात क्या है। और भगवान विष्णु ने जो महामाया उसके ऊपर में लगा दी, और वो सचमुच, अरे बात ठीक ही कहता है, हम इसके पीछे दौड़ते जा रहे, पहले परीक्षा कर न ले, जंग हाथ रखा जल करके फट। तो ये सब देवताओं की उपासना का फल होता है। देवता नहीं है, देखेंगे तुमको जीवन में सुख होगा या दुख, बीस अमृत जो कुछ मांगो वो दे देंगे। ये संसारिक संपत्ति का नाम विषय है। विषय कैसे आया? सब बीस से विषय आया, इस सत्य को समझ। ये सब विषय हैं, इनको लेकर के कोई भी व्यक्ति सुखी नहीं हो सकता, इस चीज को समझो। इस जीवन में एक ही संपत्ति है, भगवत भक्त, सर्व दुख पर आश्रय करके भगवान का नाम कीर्तन स्मरण करो, और इससे ही हमारा सब कुछ जीवन सुधर जाएगा। इस संसार में हमारे भक्ति के अनुकूल जो चीजें हैं, पुत्र परिवार इत्यादि के साथ में जो हैं, या त्यागी होकर के भगवान का भजन कर रहे हैं, अपने अपने आश्रम के अनुसार में भगवान का भजन करें। यदि गृहस्थ है, अपने पत्नी स्त्री बच्चे को अनुकूल बना करके वो लोग भी भजन करें, हम भी भजन करेंगे। और यदि कोई भजन नहीं करता है, बाधा देता है, तो उनके लिए मीरा जी, तुलसीदास जी कहते हैं, मीरा जी को उपदेश दी, जिनके प्रिय न राम वैदेही, जिनके प्रिय न राम वैदेही, तजऊ कोटि बैरी सम जद्यप परम सिंह, तजऊ पिता प्रहलाद विभीषण बंधु भरत महतारी वाली गुरु सजेव कम तपन वृतन भय जग मंगल घाय। भरत की मैया ने आराम की सेवा में बाधा दी, इसलिए भरत जी ने कहा अब तुम्हारी मैया से हमारा संबंध कर दिया। जीवन भर नहीं कहा, राम के कहने पर भी नहीं कहा, राम से कहा तुम हमारा बेटा है। कई कई बोली तुम्हारी बात भरत मान लेगा, आज जीवन में एक बार भी हम माँ आप कह दे हमारा हृदय शीतल हो जाएगा, मैं आनंद से मर सकूंगी। भरत जी को बुलाया, राम ने कहा छोटे भैया मैं जानता हूं कि तुम सब कुछ हमारे लिए करते हो, एक बात से हमारी बात रखें। भरत जी ने कहा जीवन भर में तो इनकी हमने सिर्फ सेवा की, कोई वृद्ध काम नहीं किया, अब ये जो कह रहे हैं किस लिए कोई बात होगी। उन्होंने कहा जी भैया ठीक है, आपकी सभी बातों को मानूंगा, केवल महारानी कैकई को मैया नहीं कहूंगा। क्यों? भगवान के भजन में सेवा में बाधा दी। गुरु को किसने त्याग किया? महाराज बलि ने गुरु को त्याग कर दिया। जो गुरु भगवान का भजन ही आगे नहीं बढ़ाता और हमको अपनी संपत्ति समझ करके शिष्यों को अपने भोग्य पदार्थ समझ करके भोग करना चाहता है, ऊपर में भगवान के तरफ में नहीं बढ़ाना चाहता है, ऐसे गुरु का प्रत्याग होना चाहिए। इसलिए शुक्राचार्य जी को बलि महाराज जी ने प्रत्याग किया। भैया को कौन प्रत्याग किया? विभीषण ने अपने भाई को सीता जी को चोरी करके लाया, तुम्हारा हमारा कोई संबंध नहीं। बंधु को भी प्रत्याग किया। गोपियों ने अपने पतियों को छोड़ दिया, किंतु ये सब छोड़ने पर भी भये जब सीता को किसने छोड़ दिया? प्रहलाद महाराज ने। इस प्रकार से जगत में मंगल हुआ, इसलिए भक्ति के अनुकूल है तो ग्रहण करो, प्रतिकूल है तो कोई भी चीज हो उसका प्रत्याग। प्याज लहसन बीड़ी सिगरेट धूम्रपान मत करो, चाय को भी प्रत्याग करो, इसमें बहुत से बीज हैं। यहां तक कि तुम लोग एकादशी का व्रत करो, ये अनुकूल। वैष्णव का संग करो, गीता भागवत रामायण का कुछ न कुछ जल। ब्राह्मण और जो हमारे जो तीन वर्ण हैं, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य इत्यादि, अब तो रहा नहीं केवल नाम है, किंतु फिर भी गायत्री इत्यादि का पाठ करो, जप करो। स्त्रियां गोपाल मंत्र इत्यादि हैं, उसे भी उनका सब करें। वृंदावन में कभी कभी जाइए, जमुना जी का दर्शन कीजिए। वृंदावन यहाँ पर भी जमुना जी हैं, किंतु वो महात्मा नहीं है जो कि वृंदावन है। कभी कभी जरूर जाइए, वहां पर नहीं जाने से भी वैष्णव का संग साधुओं का संग हो जाएगा। हरि कथा अपने आप प्रवाहित होती है जमुना में, उसमें गोता भी लगा सकते। ऐसा करने से धीरे 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 भगवान की तरफ में मति जाएगी, सहज सरल रूप में भगवान की तरफ में रुचि आएगी और भव सागर को सहज भी पार। आज मैं यही वक्तव्य कहकर के मैं समाप्त करता हूँ, और जिन लोगों ने आयोजन किया है मैं इनका भूरी भूरी अभिनंदन करता हूँ और इनको धन्यवाद देता हूँ। भविष्य में भी ऐसे प्रोग्राम रखें जिसको जनता तक समझ अच्छी तरह से भगवत भजन करने के लिए सत्य मार्ग मिले। कलयुग में भगवान के नाम के बराबर कुछ नहीं है, ध्यान इत्यादि कलयुग का धर्म नहीं। ध्यान तपस्या योग यज्ञ इत्यादि अश्वमेध इत्यादि यज्ञ ये सब कुछ भी काम का नहीं है, नाम यज्ञ है। भगवान नाम सरल सहज रूप में सदाचार अवलंबन कर इन चीजों का पालन करते हुए आप लोग सभी लोग भक्ति में बढ़ें, सभी पर भगवान कृपा करें। यहां तक भी समझेंगे, राम और नृसिंह के भी मूल पुरुष ये कृष्ण हैं, उन्हीं से सारे ये सब जितने अवतार निकलते हैं, और कृष्ण है अवतारी अंतिम है। इस विषय को ध्यान रखकर के आप लोग भगवान का भजन करें, हरि नाम करें। जो नाम नहीं करें आज से ही नाम करना आरंभ कर दें। नाम क्या? हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम। इस नाम का ये महामंत्र कलयुग का, जरा नाम करवा दो तो।